ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। देश के विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जताई प्रतिबद्धता। प्रतिनिधि सभा बैठक को उपलब्धि मूलक बनाने के विषय में सभामुख और राजनीतिक दलों के प्रमुख सचेतक तथा मुख्य सचेतक के बीच हुआ विचार विमर्श। और उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण कम से कम 3 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इंजीनियर दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि देश की मौजूदा स्थिति के बारे में सरकार जानकार है और समस्याओं के समाधान के लिए तैयार भी। उन्होंने कहा कि नेपाल और नेपालियों का अतीत प्रशंसा योग्य जरूर था, लेकिन मौजूदा स्थिति संतोषजनक नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को विश्वास मत देने का निर्णय किया है। पार्टी अध्यक्ष महंत ठाकुर की अध्यक्षता में हुई संसदीय दल की बैठक ने प्रधानमंत्री ओली को विश्वास मत देने का निर्णय किया। ये जानकारी प्रमुख सचेतक रामप्रकाश चौधरी ने दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार में विष्णु रिमाल को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज शाम हुई बैठक ने एमाले के नेता विष्णु रिमाल को प्रधानमंत्री के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया। इसी तरह बैठक ने प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार में डॉ युवराज खतिवाड़ा को नियुक्त करने का निर्णय किया है। यह जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने दी। इसी तरह बैठक ने मंत्रिपरिषद अंतर्गत के विभिन्न 5 समितियां भी गठन करने का निर्णय किया है। बैठक ने राजनीतिक समिति के संयोजक पद पर उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाशमान सिंह, प्रशासन समिति में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, सामाजिक समिति के संयोजक में श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शरद सिंह भंडारी को नियुक्त करने का निर्णय किया है। इसी तरह विधेयक समिति के संयोजक की जिम्मेदारी गृहमंत्री रमेश लेखक को सौंपी गई है। वहीं आर्थिक पूर्वाधार समिति के संयोजक की जिम्मेदारी उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु पौड़ेल को दी गई है। सभामुख देवराज घिमरे ने राजनीतिक दल के प्रमुख सचेतक और मुख्य सचेतकों से प्रतिनिधि सभा का कैलेंडर, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विश्वास मत के लिए भेजे गए सूचना लगायत के विषय में विचार विमर्श किया है। आज संघीय संसद सचिवालय में हुई बैठक में प्रधानमंत्री के विश्वास मत प्रतिनिधि सभा बैठक को उपलब्धि मूलक बनाने के विषय में सभामुख और राजनीतिक दलों के प्रमुख सचेतक तथा मुख्य सचेतक के बीच विचार विमर्श हुआ है। ये जानकारी नेकपा एमाले के मुख्य सचेतक महेश बरतौला ने दी। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने कहा कि तम्बाकू उत्पादों पर टैक्स नहीं बढ़ाया जा सकता। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की उद्योग तथा वाणिज्य और श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति में तंबाकू, खैनी एवं गुटखा उद्योग की पूंजी एवं क्षमता वृद्धि के संबंध में चर्चा में मंत्री भंडारी ने कहा कि अन्य देशों ने तंबाकू पर 75% से अधिक कर लगा दिया है, लेकिन हम उन देशों की अभ्यास को अवलंबन नहीं कर पाए हैं। मंत्री भंडारी ने कहा कि तंबाकू उद्योग रोजगार प्रदान करता है क्योंकि इस क्षेत्र से राजस्व अधिक है। हालांकि उद्योग को तुरंत बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता और कर बढ़ाया जा सकता है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ हजुर।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। सहकारी संस्थाका बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमै गठित संसदीय जाँच विशेष समिति ने आज सहकारी क्षेत्र से सम्बन्धित पत्रकारों से विचार विमर्श किया है। विचार विमर्श के दौरान समिति के सभापति सूर्य बहादुर थापा ने सहकारी की समस्या का समाधान करने में मीडिया वालों की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रतिनिधि सभा के सांसदों ने आदिवासी जनजाति समुदाय के भीतर भी पिछड़े हुए वर्गों को मूल प्रवाह में लाना चाहिए। संसद के महिला तथा सामाजिक मामला समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक में समिति के सांसदों ने आदिवासी जनजाति के भीतर के भी पहुंच वाले व्यक्ति ही समावेशिता के नाम पर अवसर ले रहे प्रवृत्ति के अंत के लिए जनजाति के भीतर के भी सीमांतकृत महिलाएं अभी भी पीछे है। नेपाल सरकार के महान्यायाधिवक्ता रमेश बराल ने आज पदभार ग्रहण किया है। महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के दौरान महान्यायाधिवक्ता बराल ने कहा कि संवैधानिक और कानूनी दायरा के भीतर रहकर सरकार कानूनी सलाह देने और पीड़ितों को अधिकतम न्याय देने के विषय पर केन्द्रित रहेंगे। महान्यायाधिवक्ता बराल ने यह भी कहा कि संवैधानिक और कानूनी दायरा के भीतर रहकर सरकार को कानूनी सलाह देने और सरकार के विरुद्ध मुकदमा पड़ने पर पक्ष में बहस पैर भी करेंगे। इससे पहले ही महान्यायाधिवक्ता बराल ने पद तथा गोपनीयता का शपथ लिया था। बता दें कि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में प्रधान न्यायाधीश विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ ने महान्यायाधिवक्ता बराल को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रशांत महासागर के मध्य भाग में अवस्थित टापू राष्ट्र किरिबली के साथ नेपाल ने कूटनीतिक संबंध कायम किया है। इसके साथ ही नेपाल का कूटनीतिक संबंध स्थापित का संख्या 183 पहुंची है। बेलायत के उपनिवेश से सन 1979 में स्वतंत्र हुए किरिबली का जनसंख्या 1,20,000 है। बता दें कि टापू राष्ट्र 1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। काठमांडू महानगरपालिका ने डेंगू होने के शंका में तत्काल 1180 में संपर्क करके परामर्श लेने के लिए नागरिकों को आग्रह किया है। अभी लगातार के बारिश से डेंगू संक्रमण बढ़ सकता है, इसलिए काठमांडू महानगरपालिका ने डेंगू रोग के शंका होते ही तत्काल 1180 में कॉल करके परामर्श लेने के लिए नागरिकों से आग्रह किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। इस रेल दुर्घटना में 30 लोग घायल भी हुए हैं। रेलवे की कार्यकारी निर्देशक सूचना एवं प्रचार के मुताबिक दुर्घटना के पहले चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनी थी। इस मामले में बाकी जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। संभव है इसके बाद हादसे और इसके पीछे की वजह की कुछ जानकारी सामने आ सके। गोंडा की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ रश्मि वर्मा ने बीबीसी से बातचीत में उन तीनों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं और 30 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जताई प्रतिबद्धता। प्रतिनिधि सभा बैठक को उपलब्धिमूलक बनाने के विषय में सभामुख और राजनीतिक दलों के प्रमुख सचेतक तथा मुख्य सचेतक के बीच हुआ विचार विमर्श। और उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के बीच कुछ डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण हुई कम से कम 3 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।